ओम शांति। कुमार जीवन अव्यक्त बाप दादा की शुभशिक आशा है। तपस्वी कुमारों के प्रति मुरली है। 23 जनवरी 1970, 23 जनवरी 1970। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो। कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, के लिए भी सरल मार्ग, क्योंकि क्यों सरल मार्ग है कुमारों के लिए? क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है, इसलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखना। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उससे दूर नहीं होना है। मुरली है 23 जनवरी 1970 की कुमारों प्रति मुरली का लास्ट पैराग्राफ है ये, जिसमें बाबा कह रहे हैं कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। कुमार जीवन ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो। कुमारों के लिए है ही सरल मार्ग। क्यों सरल मार्ग है? क्योंकि कुमार या कुमारियों के लिए सरल मार्ग है। प्रभाकर भाई क्यों है? क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरना पड़ता है, इसलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था ना कुमारियों के लिए, पहले अपने माँ बाप को याद करती है, शादी होने के बाद फिर सास ससुर को याद करती है, फिर पति को याद करती है, फिर बच्चे को याद करती है। झुकना पड़ता है। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। बंधन है ही मन के। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उससे दूर नहीं होना है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कुमारों के लिए और कुमारियों के लिए सरल मार्ग है, क्योंकि निर्बंधन है और क्योंकि उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़े। और एक तरफ कुमार या कुमारी, दूसरी ओर गृहस्थी, संसारी व्यक्ति गृहस्थी के बोझ के नीचे दबा हुआ। क्या अंतर है दोनों में? दोनों ही ज्ञान में उसकी जिम्मेवारियां बहुत है, उसकी कम है। और इंडिपेंडेंट है, इधर उधर डिपेंडेंट है, इधर फ्रीडम है। सबसे मुख्य बात है फ्रीडम, स्वतंत्रता। यहाँ स्वतंत्रता है, वहां पर स्वतंत्रता नहीं है। कहीं पे जाना हो तो पूरा परिवार है साथ में, अकेले नहीं घूम सकते। और शक्ति कम है उधर, इधर ज्यादा है। उधर टेंशन है, इधर अटेंशन। और इधर प्यूरिटी की पावर है, उधर थोड़ी कम है। और अभी ज्ञान में चल रहे हैं ना। और उधर बच्चे हैं बहुत। बच्चे क्या करते हैं? शांति से रहने देते हैं कि शांति से तंग करते हैं बहुत? और इधर बच्चे वगैरह कुछ नहीं है, फायदा है थोड़ा। अपनी मर्जी से जो चाहे वो खाओ। उधर
तो अपनी मर्जी नहीं है,
जो मिला वो खाना है। आज स्पेस किस लिए? सब कुछ करने के लिए, उधर स्पेस कम है आज। उधर अपने लिए कमाओ, इधर खाओ कमाओ और डबल कमाई। कल कहा था ना, बेफिक्र हो, बेफिक्र बादशाह हो, कमाया और लगाया, शरीर निर्वाह और सेवा निर्वाह, बस दो के लिए। उधर दो सारा परिवार है और
उधर आश्रय मतलब दुश्मन।
अच्छा, और गृहस्थी और सन्यासी, एक तरफ कुमार और कुमारी और दूसरे तरफ गृहस्थी, और उधर रीति रिवाज नहीं निभाओ तो लोग कुछ कुछ कहते हैं, यहाँ तो कोई परवाह नहीं है किसी की, जो कहना है करो। संबंध बहुत सारे उधर, उनका बंधन है, और वहां पर हर बात माननी पड़ती है उधर भाइयों को। He that is married thinks of his wife, that how he may please her. He that is unmarried thinks of the Lord, that how he may please the Lord. Bible में लिखा है कि जो शादीशुदा है वो ये सोचते रहता है कि मेरी पत्नी को कैसे खुश करूं, और जो अनमैरिड है वो ये सोचता रहता है कि प्रभु को कैसे खुश करूं। He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me. जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। He that loveth his wife, sons and daughters more than me is not worthy of me. जो अपनी पत्नी को और अपने बेटी को और बेटे को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। Jealousy God. मेरे अलावा और किसी से प्यार मत करना। अगर बाप का हाथ छोड़कर किसी के और का हाथ छोड़कर जाते हो तो
अच्छा,
ये बाप देख नहीं सकता, इतना प्यार है बाप का। तो और उधर बच्चे क्या क्या करते हैं?
तूफान मजा देते
हैं। बाबा के दिन आते हैं ना बच्चे स्टेज पर। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, ये गुम हो गया, वो गुम हो गया, तो एक तो उनको ढूंढना पड़ता है। एक व्यक्ति था जो कि स्टेशन पर था, तो देखा कि बहुत अच्छा खिलौनों का दुकान है, और वहां पर जो खिलौने वाला होता है वो कहता है कि यहाँ पर अनब्रेकेबल है एक एक टॉय। वो कहता है मैं इसको लेता ही हूँ, क्योंकि मेरा जो मित्र है उसका जो बेटा है ना, कोई भी खिलौने को एक दिन के अंदर तोड़ देता है, कुछ भी, अभी तक जितने खिलौने कोई भी देता है सब तोड़ देता है। कहता है ये बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा खिलौना लेके जाता हूँ कि अनब्रेकेबल है। तो वो लेके जाता है और देता है, तो फिर एक हफ्ते के बाद जाता है, बोलते क्या हुआ खिलौना है? तो बोलते खिलौना तो है पर उस खिलौने से इस बच्चे ने सारे दूसरे खिलौने तोड़ दिए, और घर के जितने कांच और बाकी कीमती वस्तुएं थी सारी तोड़ दी। अब बताओ क्या करें? तो गृहस्थी, गृहस्थी में बोझ है, गृहस्थी में दिखावा भी है, बहुत दिखावा करना पड़ता है वहां पर, शो करना पड़ता है। वो दिखाया ना मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, कि उसकी पत्नी कार से उतरती है, नई नई कार ली होती है अभी अभी, कार से उतरती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से उसको पानी वगैरह छिड़क के उसको जगाते हैं, तो वो होश में आती है, बोलती क्यों क्या हुआ, क्यों तुम बेहोश हो गई? बोलती क्या करूं, कार में गर्मी इतनी थी कि एकदम जी ये होने लगा, घुटने लगा, और उसकी वजह से पसीना इतना आ गया, और जैसे उतरी कार खुलती बेहोश होकर गिर गई। वो कहती है क्यों, कांच क्यों नहीं नीचे किया? बोलते क्या बेइज्जती करानी है मोहल्ले में, सबको पता चल जाएगा हमारी कार में एसी नहीं है। तो गृहस्थी जो होती है उसमें बहुत दिखावा होता है, झूठा नाम शान सब दिखाना पड़ता है, वहां पर हर फंक्शन में जाना पड़ता है, नहीं गए तो लोग कुछ कुछ बोलते हैं, तो वहां पे बंधन ही बंधन है। और भी कोई पॉइंट है? इधर कुमार और कुमारी और उधर में अंतर दोनों में, इधर और उधर, सारी इच्छाओं का ध्यान देना पड़ता है इस मार्ग में अकेला, उसमें गृहस्थी
जिसके आगे सारे झुकते हैं उसके आगे उसको सब झुकना पड़ता है,
उसको उधर झुकना पड़ता है सबके आगे। और वहां पे मोह बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, मोह कम नहीं होता है, मोह का विस्तार होता है वहां पर। और इधर खर्चा कम, खर्चा ना के बराबर, उधर खर्चा ही खर्चा है, इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है, एक पूरी हुई तो दूसरी तैयार हो जाती है उधर। वो बताया था ना, वो व्यक्ति गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु बहुत होगी गृहस्थी, अभी मुझे फिर से वो नहीं, भगवान प्रसन्न होते उसकी भक्ति से और कहते हैं मन्नत मांगो, तो वो कहता है बहुत हो गया गृहस्थी, बहुत ही दुखी हुई, इस गृहस्थी ने दुखी कर डाला, अभी फिर से कुमार बना दो। तो भगवान कहते हैं मैंने मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। तो निर्बंधन है यह जीवन, कुमार और कुमारियों का जीवन निर्बंधन है, कोई बोझ नहीं है, उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़े है, परवाह नहीं है किसी बात की, शक्ति बहुत है, समय भी, टाइम भी बहुत है, उधर टाइम कमी है, सारे दिन भर बिजी बिजी कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है, तो भी संतुष्ट नहीं होते। संतुष्टता का सर्टिफिकेट किसी पति को उसकी पत्नी दे दे मुश्किल है, समय सारा इसको उसको खुश करने में चला जाता है। और इतने पॉइंट है कि बहुत है, हम आप आने से पहले ही हम संभाल ही रहते अब तक। उधर लड़ाई झगड़ा तो होना ही है, कुछ ना कुछ बात में छोटी ना कोई ना कोई छोटी बातों में होता ही है, कुछ ना कुछ होता है, आवाज होती है। जैसे वो दिखाए ना दत्तात्रेय जो है, उसके जो 24 गुरु है उसमें से एक गुरु वो किसको बनाता है, एक कन्या को जो कि धान कूटती रहती है, उसके हाथों में चूड़िया होती है, इधर बहुत सारी और इधर बहुत सारी, तो वो भिक्षा मांगने जाता है, तो तब तक तो धान वो कहती है थोड़ा रुको, तब तक वो बाहर बैठकर खड़ा रहकर देखता है, तो इस हाथ से कूटती है फिर इस हाथ से कूटती है, तो इधर चूड़िया बजती है इधर चूड़िया बजती है, उसको लगता है कि चूड़ियों का आवाज ज्यादा हो रही है, तो दो चूड़िया बाहर निकालती है इधर, फिर करती है फिर बजती है, फिर इधर से दो चूड़िया निकालती, फिर इधर से दो चूड़िया निकालती, फिर भी बजती रहती है, अब दो इधर बजती है दो इधर बजती है, फिर भी बजती है चूड़िया, तो वो एक चूड़ी रह जाती है इधर और एक चूड़ी इधर रह जाती है, अब कूटती अब नहीं बजती। वो कहता है ये लड़की है मेरा गुरु, अकेला ही रहना चाहिए सन्यासी को, दूसरा एक भी अगर आ गया तो आवाज होगा, बातें होगी, कुछ ना कुछ होगा, इसके लिए उस झंझट में पड़ना ही नहीं है कि दूसरा आ जाए और फिर उससे अलग रहे, उससे फिर अनासक्त भाव कमल पुष्प समान रहे, फिर वो सारी साधना करो कीचड़ में रहते हुए कमलवत। तो पहले ही नहीं, उधर सब जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और मोह का जो विस्तार है वो गृहस्थी में बहुत ज्यादा है, जैसे दिखाया है किसी एक गुरु ने, सबने सुना है ये, तो अपने शिष्य को मरते समय एक सूत्र देता है और कहता है कि बेटे इसको कभी मत भूलना, ये जो बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको कभी मत भूलना जीवन में, तुम मेरे शिष्य और ये परंपरा जो है तुम्हें ही चलानी है। अभी कहता है कि सब कुछ करना पर बिल्ली को मत पालना, सब कुछ करना पर बिल्ली को मत पालना। तो गुरु तो स्वर्ग सिधार जाते हैं और वो ये बात भूल जाता है, फिर अपनी तपस्या जंगल में आरंभ करता है कुटिया में, परंतु समस्या ये होती है कि एक चूहा बहुत ही परेशान करता है, उसके दो ही वस्त्र होते हैं तो उनको बार बार कुतरता है, और जब भी गांव में भिक्षा लेने जाता है तो लोग कहते हैं ये क्या, ये तुम्हारे वस्त्रों को क्या हुआ। पहले तो बहुत छुपाता है और एक दिन बता ही देता है कि ऐसी मेरी समस्या है, मेरी कुटिया में ऐसे 2-3 चूहे अभी तो ज्यादा बढ़ गए, वो आके मेरी तपस्या भी भंग करते हैं और ये मेरे जो वस्त्र है उसको भी काटते हैं, कुतरते हैं। तो कहता है तुम एक काम करो ना, एक बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते, अगर बिल्ली पाल लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। होता है उसके मन को बात जचती है, बात तो सही है, फिर वो बिल्ली पालता है। बिल्ली पालता है तो वास्तव में सपाचट एक मास में सारी बिल्ली सारे चूहों को खत्म कर देती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। बिल्ली सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लेती है ना उसकी, तो फिर बिल्ली को जब भूख लगती है तो अब क्या करे, तो फिर दूध तो चाहिए। तो फिर गांव वाले तो बहुत ही हितैषी होते हैं ना साधु संन्यासियों के, हमेशा कुछ ना कुछ तो बताते हैं ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो उसको कहते हो क्यों ना तुम एक गाय पाल लेते हो, सारे दिन भर चारा तो बहुत है वहां पर, सारे दिन भर चारा खाएगी, शाम को दूध निकालना, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा और बिल्ली के लिए भी हो जाएगा। बोलते बात तो बहुत ही बढ़िया है, कोई गांव वाला गाय भी दे देता है उसे। तो फिर गाय आ जाती है तो गाय सारे दिन भर चरती है और शाम को दूध निकालता है, खुद भी पीता है और फिर बिल्ली के लिए भी हो जाता है। परंतु अभी गाय के लिए चारा थोड़ा कम पड़ता है तो गांव वालों के पास फिर जाता है, अब क्या करे। तो बोलते वो जो बाजू में जो जगह पड़ी है क्यों ना तुम उसमें थोड़ा सा खेती वगैरह कर लो, तो ताकि उसमें से जो वो बाकी का जो बचा हुआ रहेगा वो गांव के लिए गाय के लिए हो जाएगा और थोड़ा चावल भी तुमको, चावल अनाज भी तुमको मिल जाएगा। बोलते बात तो बढ़िया है, तब तक वो बात तो अपने गुरु की भूल ही जाता है कि बिल्ली मत पालना। फिर खेत आ जाता है तो अब तो सारा ही समय गैया उसका गोबर और इधर ये खेत, इसमें तो साधना के लिए समय कम मिलने लगता है। तो बोलते हैं अब क्या करूं। तो गांव वाले तो बहुत ही हितैषी है, कहते हैं कि अभी अभी किसी ने शरीर छोड़ा है, उसकी पत्नी जो है बड़ी ही साध्वी है, तुम उसे क्यों नहीं रख लेते, वो तुम्हारी सेवा भी करेगी, बहुत साधु स्वभाव की है और थोड़ी मदद भी करेगी। तो बोलते हैं बात तो बहुत अच्छी है, तो उसको ले आते और फिर वो उसकी मदद भी करती है, दोनों मिलके खेती करते हैं दिन भर। तो फिर थोड़ी साफ सफाई भी करती है, उसके पैर भी दबाते और कुछ ही मास में दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है तो उसको लगता है अब क्या किया जाए। तो गांव वालों को एक दिन बता ही देता है, गांव वाले कहते हैं आप तो सचमुच में महात्मा हो, ऐसी गुप्त बात आपने हमको बता दी, आप तो देवता जैसे हो, तो क्यों ना आप दोनों शादी कर लो। तो बोलते हाँ बात तो फिर भी ठीक ही है। अभी भी उसे पता नहीं चलता है, गुरु की बात अभी भी भूला हुआ है, शादी भी हो जाते और बच्चे भी हो जाते, अब तो सारा ही समय बच्चों के पीछे और उधर गाय के भी बच्चे बछड़े और खेत और वो गोबर और तपस्या का तो नाम निशान नहीं। कहाँ चले थे साधु बनने और कहाँ से माया आई और कैसे आई और कैसे विस्तार हुआ। वो कहता है अभी ये जन्म तो गया, अभी अगले जन्म में कभी बिल्ली नहीं पालूंगा, इस बिल्ली की वजह से ये पूरा जन्म व्यर्थ हो गया। हाँ उसका कुछ करना पड़ेगा अभी चूहों को खत्म करने का। तो विस्तार है संसार में भी, कहाँ से माया आती है और जब आती है तो ऐसा पता नहीं चलता है, साइन बोर्ड तो लिखा नहीं रहता है कि ये माया है, दबे पाव से आती है। जब पूरा ही विस्तार हो जाता है और पूरा फंस जाते हैं तब पता चलता है ये माया। इसके लिए कल की मुरली में कहा ना बाबा ने, नाखून भी संकल्पक रूपी नाखून भी बाहर ना हो, संकल्प बोल और कर्म श्रीमत की लकीर के अंदर। ये क्यों कहा हुआ है, क्योंकि पहले संकल्प में प्रवेश करता है आसक्ति मोह प्रेम जिसे संसार कहता है, पहले संकल्प फिर बोल में आता है फिर कर्म में आता है फिर संबंध संपर्क और फिर फंस जाते हैं उस जाल में। यह जानना कि हम फंस चुके हैं यह भी एक रियलाइजेशन है, टू नो दैट यू आर इन द प्रिज़न, हम कारागृह में है, तभी हम छूटने के प्रयोग कर सकते हैं, मार्ग ढूंढ सकते हैं। इकहार्ट नाम का एक बहुत मशहूर संत हुआ है विदेश में, अभी जो नया इकहाट है वो नहीं पुराना, उसमें लिखा है कि नोबडी नोज दैट वन इज इन प्रिजन. द मोमेंट यू नो दैट यू आर इन प्रिजन यू स्टार्ट मेकिंग अटेम्प्ट टू रिलीज यूर सेल्फ, टू फ्री यूर सेल्फ. जब तक हमको ये ना पता चल जाए कि हम एक कारागृह में है, हम कैसे मार्ग ढूंढे. जब ये पता चल जाए कि मैं फंस चुका हूं, बंदी ग्रह में हूं, तब हम सोचेंगे क्या करें अभी, कहां से सुरंग खोदे, कोई दरवाजा दिख रहा है कहीं जहां से निकले बाहर, या और कोई उपाय करें कि जिससे इस कारागृह से, मानसिक कारागृह, भावनाओं का कारागृह, संबंधों का कारागृह, वासनाओं का बंदीग्रह, इच्छाओं का कारागार, इसमें कहीं ना कहीं हर आत्मा फंसी है. जब हमें ये रियलाइजेशन हो कि मैं फंस चुका हूं, यू आर इम्प्रिजेंट, तब मार्ग ढूंढना पड़ेगा, तभी आगे का संकल्प आएगा कि अभी इससे कैसे छूटू, इस बंधन से. कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई साधन हो सकता है, कोई वैभव हो सकता है, या फिर इस ज्ञान योग में चलते चलते विकारों को तो छोड़ दिया, उसका वो मैपन भी हो सकता है, मैं का बंदी ग्रह, मैं, ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी सेवाएं है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, इसे मैं चला रहा हूं, अगर मैं ना चलाऊं तो ये चलेगा नहीं, ये बंदी ग्रह है. कब प्रवेश किया वो बिल्ली ने, कब प्रवेश किया पता ही नहीं उसकी तिथि तारीख पर बंध गई है आत्मा, कहा ना कहा बंधन में है. इस बंधन से स्वयं को छुड़ाना है. पहले तो ये रियलाइजेशन कि मैं बंध गया हूं, ये कोई मानने को तैयार नहीं है. फर्स्ट रियलाइजेशन कि हम प्रिजन में है. कौन सा वो प्रिजन है? हरेक का प्रिजन, कारावास अलग अलग है हरेक का. वो स्वयं ही ढूंढना, जानना, पहचानना और फिर उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना. मुरलियों में फिर ढूंढना क्या मार्ग है. बाबा जो ये कह रहे हैं, सहज है, सहज है, सहज है, जैसे ये सहज है मार्ग, परंतु उधर फंसना भी उतना ही सहज है. यह देह जो है फंसाती है. एक अव्यक्त महावाक्य है, बहुत ही शक्तिशाली, कहीं बाबा ने लिखा है, कहा है, जैसे इस समय प्रकृति में कोई सार नहीं है, वैसे ही प्रकृति से बने इस देह में भी कोई सार नहीं है. बाबा ने कहा है, जैसे इस समय प्रकृति में कोई सार नहीं है, वैसे ही प्रकृति से बने इस देह में भी कोई सार नहीं है. सारी चेष्टाएं, सारी वासनाएं, सारी कामुकता देह से उत्पन्न होती है. सारा संसार आज इसी कामुकता के बंदीग्रह में फंसा है. जहां देखो जो उपन्यास, सब कुछ उसी पर आधारशिला काम वासना ही है हरेक की. इससे कोई भी अछूता, अप्रभावित, अनटच्ड कोई नहीं है संसार में. सभी उसमें फंसे हैं. ज्ञान की श्रेष्ठ धारणा और योग के अभ्यास से ही इससे छुटा जा सकता है. यहां तक कि ब्राह्मण परिवार में भी कौन इससे छुटा है. सब कुछ जानते हुए भी काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते है, रोज वहां वाक्य मूल्यों में आते हुए भी वासनाएं बहुत तीव्र है, आवेग है उनमें. चारों ओर का वातावरण विकारी है. जो कुछ टीवी में, मोबाइल में जो कुछ है, सब कुछ वासनामयी है. हवाओं में भी वासनाएं हैं. ऐसे वातावरण में कौन सुरक्षित रह सकता है? पावर हाउस से कनेक्शन कल बोला ना बाबा ने, केवल वही. बहन जी जाने वाले ना, कुछ बोलेंगे वो उसके बाद में कमेंट है, दूसरी बहन जी कराएंगे. 5 मिनट.